लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवनी पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटा नागपुर के प्रेरित लोगों को मुक्ति दिलाने वाले न्याय के शूरवीर और छोटा नागपुर में कार्तिक मिशन के संस्थापक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स का नाम छोटा नागपुर के इतिहास में सदा ऊंचा रहेगा। वे यीशु के प्रेम से इतने सराबोर थे कि किसी प्रकार की कठिनाई उन्हें विचलित नहीं कर सके। छोटा नागपुर के लोगों के लिए गरीबी और बेरोजगारी के कारण आज भी बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं। हम फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने लोगों की रक्षा करें। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना था कि मिशन में विस्तार की खुशी के साथ ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स को कई प्रकार की चिंताएं भी थीं। आज हम उनके द्वारा चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ उनके कार्यों में सफलता के बारे सुनेंगे। तोरपा मिशन के द्रुत गति से विकास के कारण एक ठोस व्यवस्था की मांग हो रही थी। नाम मात्र के ख्रिस्तियों को सच्ची धर्म शिक्षा देने एवं विश्वास में मजबूत होने के लिए मदद दिए जाने की आवश्यकता थी। यह आवश्यकता धन और व्यक्ति की मांग कर रही थी ताकि मजबूत ख्रिस्त समुदाय का निर्माण किया जा सके। अपनी व्यथा बतलाते हुए फादर लेबन्स अपने प्रोविंशियल सुपीरियर को लिखते हैं, मेरे पास धर्म परिवर्तन किए हुए बहुत सारे लोग हैं जो एक पिता के बच्चों के समान प्रवृत्त एवं दृढ़ पकड़ में हैं। मैं मानता हूं कि तोरपा विश्व में एक सबसे सुंदर मिशन है, किंतु इस मिशन को और अधिक विकसित होने की जरूरत है और व्यवस्था के बिना किया गया सारा काम व्यर्थ हो सकता है, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना की गई हो। हम अपने मिशन को पचोरा में बांट रहे हैं। 10 पचोरा बनाए जा चुके हैं। हम हर पचोरा में एक गांव गिरजा और घर बनाने में लगे हुए हैं। उस काम को ठीक से पूरा करने के लिए हमारे पास साधन का अभाव है। हर गांव गिरजा में 200 पैसे खर्च होंगे और अभी हमें 10 गिरजा घर बनाना है। इसे बनाने में देर नहीं करना होगा, क्योंकि प्रार्थनालय के बिना ख्रिस्ते बिना चरवाहे की भेड़ों के समान हैं। जो समुदाय मुरझाता वह अपना उत्साह खो देता है और गैर ख्रिस्ते रास्ता अपना लेता है। 1887 के मार्च में 5 पचोरा बनाया गया था और साल के अंत में और 7 पचोरा का निर्माण किया गया। हर पचोरा में 7 से 8 गांव आते थे, जिसकी आध्यात्मिक देखभाल हेतु एक प्रचारक नियुक्त किया जाता था। गांव के गिरजाघर को बच्चों के लिए स्कूल घर और प्रार्थना के स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता था, जहां हर दिन पूरा समुदाय जमा होता था। जब फादर लेबन्स मार्गदर्शन देने हेतु मिशन दौरे पर जाते थे, तब वे गांव गिरजाघर के अंदर अथवा उसके निकट मिस्सा करते या अपने विश्वासियों से मुलाकात करते थे। तीर्थयात्रियों को रात बिताने के लिए भी यही जगह दी जाती थी। मिशन सुपीरियर फादर ग्रोसचीन को फादर लेबन्स की योजना और आवश्यकता की पूरी जानकारी थी। वे पचोरा के गठन की योजना का समर्थन भी करते थे, अतः उन्होंने प्रोविंशियल का ध्यान छोटा नागपुर की ओर खींचते हुए पत्र लिखा, तोरपा के विस्तृत मिशन की देखभाल करना छोटे गिरजाघरों के निर्माण के बिना संभव नहीं है, जहाँ मिशनरी ठहर सकें और लोगों को जमा कर सकें। अभी जिस तरह की स्थिति है, फादर लेबन्स को गांव की जगह का निर्माण करना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हें काम का बहुत अधिक भार है। यदि इसका समाधान ना किया जाए तो तोरपा टुकड़ों में बट जाएगा या मंद पड़ जाएगा। 18 मार्च 1887 को फादर ग्रोसचीन रांची पहुंचे। तोरपा में उन्होंने फादर लेबन्स को अकेला पाया, जो अपने घर के बरामदा के द्वार पर बैठे हुए थे। फादर डिस्मिथ टूर पर गए हुए थे। फादर लेबन्स और फादर ग्रोसचीन ने मिशन पर चर्चा की, जिसमें मुख्य विषय था विक्रे ख्रिस्तियों को दल में बांटने के लिए पचोरा का गठन। मिशन सुपीरियर ने घोड़े पर तोरपा और कर्रा का दौरा कर देखा कि किस तरह से मिशनरी कार्य किए जा रहे थे और क्या करना बाकी था। तोरपा मिशन को देखने के बाद फादर ग्रोसचीन खुशी खुशी कलकत्ता लौटे। फादर लेबन्स ने भी प्रोत्साहन और उत्साह से भरकर तोरपा में अपने कार्यों को जारी रखा। कलकत्ता लौटने के बाद मिशन सुपीरियर ने रिपोर्ट तैयार कर महाधर्माध्यक्ष को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट देकर महाधर्माध्यक्ष को इतना यकीन हो गया कि उन्होंने न केवल गांव गिरजा बनाने की अनुमति दी, बल्कि उसके लिए 500 रुपये भी दिए। फादर ग्रोसचीन ने छोटानागपुर यात्रा और योजनाओं की सफलता का जिक्र करते हुए प्रोविंशियल को पत्र में लिखा, छोटानागपुर में मेरी यात्रा मिशनरियों के लिए अच्छा फल लाए बिना नहीं गई। महाधर्माध्यक्ष ने फादर लेबन्स की स्थिति को समझा है और उनकी योजनाओं को अनुमोदन दिया है, जो सचमुच विवेकपूर्ण है। इसलिए मैं फादर लेबन्स को जितना हो सके मदद करूंगा। उसके पास इस समय 4000 ख्रिस्ते हैं, जिनमें से अधिकतर धर्म शिक्षा पा रहे हैं। उससे हर माह 25 रुपया महाधर्माध्यक्ष की ओर से मिलता है। मिस्सा के फीस के रूप में दोनों पुरोहितों को 45 रुपया और उसके स्कूल के लिए मेरी ओर से 60 रुपया। फादर लेबन्स को करीब 15 से 20 प्रार्थनालय बनवाने पड़ेंगे, जहां हर प्रार्थनालय में 7 से 8 गांव के लोग एक साथ जमा होंगे। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स की जीवनी पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे।
धन्य है वो पिता ईश्वर, धन्य पुत्र परमेश्वर, धन्य है तेरा काम, धन्य है तेरा नाम। धन्य है वो पिता ईश्वर, धन्य पुत्र परमेश्वर, धन्य है तेरा काम, धन्य है तेरा नाम। तेरी रीत वचन ही तेरा सच्चा है, सत्य मार्ग जीवन है। धन्य है तेरा काम, धन्य है तेरा नाम।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक परिवर्तन। लेखक हैं विजय पंडित। श्रोताओं, हर माँ बाप का सपना रहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने, इस दुनिया में अपना नाम कमाए, उनके कामों व व्यवसाय को आगे बढ़ाए एवं बुढ़ापे में उनका सहारा बने, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अमीरों के सपने तो आसानी से पूरे हो जाते हैं, लेकिन गरीब पैसों के चलते पीछे रह जाते हैं। गरीब के बच्चे अपने माता पिता के साथ बचपन से ही काम करते, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, परंतु गरीब बच्चों के मन में भी स्कूल जाते बच्चों को देख स्कूल जाने की इच्छा जरूर होती होगी। कुछ बच्चे घर पर काम करते हुए भी सरकारी स्कूल जाते और अपने सपने को साकार करने में कामयाब हो जाते हैं और अपने दम पर जीवन में परिवर्तन लाते हैं। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके मन में किसी तरह का मैल छल कपट नहीं होता। बच्चे भी दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी तो वे हम बड़ों को भी सीख दे देते हैं। कैसे, आइए सुनते हैं विजय पंडित की लिखी नाटिका परिवर्तन।
अल्लाह के नाम से दे बाबा, मुल्ला के नाम पे दे बाबा।
ए माई दे दे माई, तेरे बच्चे खूब जिए, तेरे बच्चे खूब जिए, तुझे खुश रखे अल्लाह, तुझे बरकत दे दे माई,
अल्लाह के नाम पे दे बाबा। ए बाबा दे दे बाबा,
दे दे माई दे दे,
मोला के नाम पे दे बाबा।
ए चल चल आगे बढ़, आ गए सुबह सुबह
चंदा।
हाँ
चल आगे चलते।
चलो
अपन खड़े ही गलत जगह पर हैं, ये संसद भवन है।
अच्छा
हाँ आगे चल आगे, अल्लाह के नाम पे दे बाबा।
अरे भिकू चिल्ला चिल्ला कर गला सूख गया है, ए एक कोल्ड ड्रिंक पिला देना। पिला
अरे आज धंधा तो कुछ हुआ नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पिला दे।
अरे पिला दे,
चल पानी पी ले जाके उधर, नल लगा उधर से।
अरे भिकू
धंधे तो, अरे साला अपना तो सारा दिन ही खराब हो गया है? सामने मेरा ग्राहक आ रहा है मुझे। ए बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा।
चलो चलो आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अरे हटो यहाँ से, आगे बढ़ो।
अरे ये अपन से बड़ा भिखारी है।
हाँ अपने से बड़ा भिखारी है तुच्छा कहीं का। अरे कलदार बेटा खाना तैयार है, आजा फिर अपने बापू के संग भीख मांगने जाना।
माँ मैं भीख नहीं मांगूंगा, मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता।
ए भिखारी की औलाद, तेरे बाप दादा सब ने भीख मांगी है, क्या तू क्यों नहीं मांगेगा? चल आज ही तेरी ट्रेनिंग शुरू करवा देता हूँ।
हाँ बेटा कलदार अपने बापू की बात मान ले, नहीं तो तू बेरोजगार ही रह जाएगा।
नहीं माँ मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ।
ए चंदा हाँ। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, मैं भिखारियों की यूनियन का अध्यक्ष हूँ समझा, इसको समझा दे।
बेटा बापू की बात मान ले, पढ़ाई से ज्यादा इसमें कमाई है, बापू तुझे अच्छे से ट्रेनिंग दिला देंगे।
भीख मांगना एक आर्ट है, वो मैं तुझे सिखा दूंगा, चल मेरे साथ।
आज बापू के से भीख मांगकर मैं भिखारी बन गया, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता।
बेटा कलदार तू किस सोच में पड़ा है, बापू कह रहे थे काम धंधे पे तेरा मन नहीं लगता।
माँ मुझे समझने की कोशिश करो, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता। रोज मुझे बापू मेले कुचेले कपड़े पहना देते हैं, मेरे शरीर पर ग्रीस लगा देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता।
बेटा बेटा कलदार ही अपना खानदानी पेशा है, अब तू इसके अलावा और कर भी क्या सकता है, बता। मैं तेरे बापू से बात करूंगी।
क्या बात है?
कलदार पढ़ना लिखना चाहता है तो उसे पढ़ने लिखने दो ना।
तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पढ़ लिख कर ही हमारे पुरखों का नाम डूबेगा।
देखो जी हमारा पूरा खानदान भीख मांग रहा है, अगर एक पढ़ लिख भी जाएगा तो अपना क्या जाएगा।
साली धंधे की बाट लगी पड़ी है, जनता भी भिखारियों को बेवकूफ समझने लगी है। चल ठीक है तू कहती है तो पढ़ा लिख कर।
ओह मेरे कलदार के बापू, कितने अच्छे हो तुम। चलो आओ, आज तो तुमको मटन खिलाती हूँ।
माँ वो सामने स्कूल है, उसमें भर्ती करा देना।
पर कलदार मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी रे, पढ़ना तो तुझे है ना।
पर तुम मेरी माँ हो, वहाँ मेरे माँ बाप का नाम लगेगा।
नहीं बेटा, इस लफड़े में तू मुझे डाल मत। ये ले तेरी फीस और तू जा यहाँ से।
ठीक है माँ, मैं कल ही सुबह चला जाता हूँ।
अरे कौन हो तुम और यहाँ स्कूल के बाहर क्यों खड़े हो? अरे क्यों रो रहे हो तुम? हाँ
तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
मुझे अपना दोस्त समझो। हाँ मेरा नाम मारिया है, मारिया। मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ।
मारिया हाँ? मुझे स्कूल में भर्ती करा दो, मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ।
लेकिन तुम्हारा नाम क्या है बताओ।
मेरा,
रो मत तुम।
मेरा नाम कलदार भिखारी है।
तुम तो भिखारी हो, फिर पढ़ना क्यों चाहते हो?
देखो तुम मेरा मजाक बना दिया, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता।
कलदार मुझे माफ कर दो। हाँ मैं तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगी, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। दोस्त? हाँ आज से हम दोनों दोस्त। देखो कलदार तुम परेशान मत हो, मैं पिताजी से बात करूंगी, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो तुम्हारा यहाँ एडमिशन करा देंगे। हाँ चलो।
मारिया ये कौन है, किसको साथ लेकर आ गई?
पापा ये कलदार है, इसके स्कूल में भर्ती करा दो ना, ये मेरा दोस्त है।
कलदार? अच्छा तो ये तुम्हारा दोस्त है, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा अभी शायद तुम बोल रही थी कलदार।
हाँ मेरा नाम कलदार है।
लगता है सरदारों के खानदान से हो।
नहीं नहीं मैं सरदार नहीं हूँ।
अच्छा तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है?
जी मेरे पिताजी का नाम अब मैं आपको कैसे बताऊँ।
क्यों तो क्या वो मर गए? क्यों बेटा कलदार?
नहीं नहीं
नहीं नहीं पिताजी ऐसा मत बोलिए, वो तो जिंदा है।
तो कलदार तू बताता क्यों नहीं, बता तेरे बाप का नाम क्या है?
जी भीकू भिखारी।
भीकू भिखारी, भिखारी की औलाद। चल फूट यहां से। मारिया खबरदार आज के बाद इससे बात की, एक तो भिखारी को लेके आ गई, ऊपर से दांत निकालती हो।
पिताजी ऐसा मत कहो, ये पढ़ना चाहता है, अपना भविष्य बनाना चाहता
देखो
है।
देखो मारिया मैं तुझे समझा रहा हूँ बेटा, ये लोग भिखारी हैं, पढ़ाई लिखाई ये नहीं कर सकते।
पापा प्लीज मान जाओ ना पापा, आपको बहुत बड़ा पुण्य लगेगा किसी भी एक भिखारी को पढ़ा लिखा कर अगर आप इस काबिल बना दो कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर बड़ा आदमी बन जाए, तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा पापा?
बेटे तू मेरी बच्ची होकर इतनी बड़ी शिक्षा मुझे देगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
आज मेरे माँ बापू बहुत खुश होंगे।
परिवर्तन। अभी अभी आपने ये नाटिका सुनी, इसके कलाकार थे भवानी कोल, पूजा केलकर, विजय पंडित और संदीप दुबे। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।